किस्से कहानियाँ कहने सुनने का कोई वक्त होता है क्या? शायद होता हो या ना भी होता हो, पर एक बात ज़रूर होती है, किस्से कहानियाँ रुचते सबको हैं। वे वक्ती तौर पर मौजूद हों तो बेहतर, ना हों बीते दौर के हों तो भी बुराई नहीं, क्योंकि ये हमेशा हमें कुछ बताकर ही नहीं सिखाकर भी जाते हैं, अपने दौर की यादें दिलाते हैं, गंभीर से मसलों की घुट्टी भी मीठी करके हौले से पिलाते हैं। इसीलिए दास्तानगो ने शुरू किया है दिलचस्प किस्सों को आप अपनों तक पहुंचाने का सिलसिला। कोशिश रहेगी यह सिलसिला जारी रहे सोमवार से शुक्रवार रोज। जनाब अजब है ना, एक शख्सियत जो हमेशा ही औरतों के हक आवाज बनती रही हो, उनके लिए लड़ती रही हो, फिल्मों को भी अपनी इस लड़ाई का जरिया बनाया हो जिसने, वह भी महज 30-31 बरस की जिंदगी में, वही शख्सियत अपनी छोटी सी जिंदगी के आखिरी बरसों में खुद को ही अपने हकूक से महरूम पाए, खुद को कैदी की तरह महसूस करती रहे, जज्बातों के आगे मजबूर होकर आंसू बहाती रहे, फिर एक रोज किसी लाचार बेबस औरत की तरह इस दुनिया से चली जाए। अजब है ना, मगर ये सच है, अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल की ज़िंदगी का सच, जिनका आज 17 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। जनाब खुद स्मिता पाटिल और उनके नज़दीकी लोगों के कुछ इंटरव्यू यूट्यूब पर मिलते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की झलक मिलती है। इन इंटरव्यू में एक स्मिता जी का है, दूरदर्शन के घर बाहर कार्यक्रम के लिए यह इंटरव्यू लिया गया था। मसला फिल्मों में औरतों के किरदारों को दिखाने के तौर तरीकों से जुड़ा था, उसके पीछे काम करने वाली सोच से जुड़ा था। सुनिएगा क्या कहती हैं स्मिता जी। जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब है कि उनमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे, वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थीं जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था। जो रूरल बैकग्राउंड की हों या अर्बन बैकग्राउंड की हों, जैसे भूमिका, जैसे मंथन, जिसमें हिंदुस्तान की सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका जुनून है, वह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था। लेकिन जब मैंने कमर्शियल फिल्मों में काम करना शुरू किया, फार्मूला फिल्में जो बन रही हैं जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से, खास करके पिछले 10-15 बरसों से, उनमें फार्मूला होने की वजह से सब औरतों के पोर्ट्रेयल एक ही तरह से हो रहे थे, जैसे बहुत सारी औरतें या तो पतिव्रता, सती, हमेशा सफरिंग या बेवकूफ़ दिखाई जाती हैं, या कमज़ोर दिखाई जाती हैं, या तो फिर वो वैम्प्स होती हैं, जहाँ वो निगेटिव रोल करती हैं, जहाँ वो अपना बदन बेच के, अभी बदन बेचने में प्रोस्टिट्यूशन की जो बात आती है तो उसमें भी बहुत अच्छी फिल्में वैसे बनी हैं, 50s में भी बनी हैं, देवदास भी बनी थी, बिमल रॉय जी ने बनाई थी, गुरुदत्त साहब ने भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी, लेकिन आज कहीं जाके उसमें प्रोस्टिट्यूशन का जो दर्द है एज अ प्रोफेशन लेने के लिए, वह दर्द भूल के सिर्फ उसके बदन को एक्सपोज करने का एक तरीका बन रहा है, ये बात गलत है। इसी बीच स्मिता जी के ही एक पोस्टर पर सवाल, जिसमें वे आधा जिस्म खोलकर नल के नीचे बैठी नहाती दिखाई दे रही हैं, इस पर स्मिता जी का जवाब, आपने तो चक्र देखी है, अच्छी चली, अच्छी फिल्म थी, लेकिन एक औरत का जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है उसका नहाना, ये बहुत रोज की बात है, लेकिन आप रस्ते में रुकेंगे नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे कि इनके रहने के लिए जगह नहीं है, तो नहाने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब आप फिल्म बनाते हैं और ये जब कमर्शियल सर्किट में बिकती है, तो पब्लिसिटी की बात हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में होती है, और हिंदुस्तान की ऑडियंस को शायद ये भी नहीं होगा, लेकिन उन पर फोर्स की गई है कि देखिए इसमें तो सेक्स है, इसमें आधे नंगे शरीर हैं औरतों के, तो आप फिल्म देखने के लिए आएंगे। ये एक ऐसा एटीट्यूड बन गया है जो बहुत गलत है। सच्चे दिल से फिल्म एक बात कह रही है तो जो चलेगी, सिर्फ ऐसे पोस्टर से फिल्म चलती नहीं है। लेकिन जो बेसिक एक्सप्लॉयटेशन है ऐसे पोस्टरों का, सिर्फ स्मिता पाटिल का चक्र में नहीं है, पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में है, सभी फिल्मों में। हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते, उससे कुछ होने भी वाला नहीं है, लेकिन औरत को नंगा दिखाया तो उनको लगता है 100 लोग और आएंगे। ऐसे ही दूसरे सवाल पर स्मिता जी कहती हैं, हिंदुस्तान का जो ऑडियंस है वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको इमोशनल फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रांग है, अभी भी उनको ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं। तो इनफैक्ट अगर आदमी को गलत चीज दिखा कर उस पर उसको निर्भर किया जाए तो उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। फिर भी फिल्म जो लोग बनाते हैं या जो फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, इनके हाथों में है ये बदलना। एक बात कही जाती है, जब फिल्म बनती है फिल्म मेकर जो होते हैं वो कहते हैं कि देखिए फिल्म में औरत रोकर बाहर आई तो वो फिल्म हिट हो जाएगी। ये एक कंडीशनिंग औरतों का किया गया है। औरतों का जो यह रूप बनाया गया है वो इतने बरसों से बनाया गया है कि कमज़ोर उसको दिखा के उसको और कमज़ोर किया जाता है। लेकिन अगर आप इतनी जल्दी से बहुत पावरफुल औरत अगर आप दिखाएंगे, जैसे सुबह नाम की जो फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी, जिसमें औरत के लिए अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ के सिर्फ एक रिमांड होम की सुपरिंटेंडेंट बनने के लिए भी जाना सब कितना मुश्किल है। ये स्मिता जी हैं जनाब, जिन्होंने सिर्फ 31 बरस की उम्र और बस 10 साल के करियर में 80 के करीब फिल्में की। उनमें चंद ही ऐसी जिन्हें उन्होंने फॉर्मूला फिल्म कहा है, बाकी सब सार्थक सिनेमा। यही वजह है कि उन्हें उनके काम के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, पहले भूमिका के लिए और फिर चक्र फिल्म के लिए। यही वजह है कि उनके जाने के इतने साल बाद भी फिल्मी दुनिया ही नहीं उससे बाहर भी लोग उन्हें इज्जत की नज़र से देखते हैं। स्मिता पाटिल का निधन 13 दिसंबर 1986 को हुआ था। सम्मान के साथ याद करते हैं लोग, लेकिन विरोधाभास देखिए कि इन्हीं स्मिता जी को अपनी जिंदगी के आखिरी बरस अपने आप को एक कमज़ोर औरत की तरह महसूस करते हुए गुजारने पड़े। बात तब की है जब शादीशुदा अदाकार राज बब्बर साहब पर वे दिल हार बैठी थीं। साल 1982 में भीगी पलकें फिल्म बन रही थी, तब इन दो फनकारों की मुलाकात हुई। नादिरा उस वक्त तक राज साहब की जिंदगी में बीवी की हैसियत से मौजूद थीं, सो तमाम बातें हुईं उनके साथ स्मिता जी के रिश्ते को लेकर। इस बारे में जाने माने फनकार अन्नू कपूर साहब ने एक दफ़ा बिग FM रेडियो के लिए स्मिता जी की छोटी बहन मान्या का इंटरव्यू लिया था। साल 2015 की बात है ये। उसी में अन्नू जी ने मान्या से सवाल किया था राज साहब और स्मिता जी के रिश्ते के बारे में, उनके बच्चे प्रतीक को जन्म देते ही उनका निधन हो जाने के बारे में। तब मान्या ने बताया, एक्चुअली उसे महसूस होता था कि मैं शायद इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। जब आप किसी मैरिड आदमी के साथ इन्वॉल्व हो जाते तो उसके लिए मेरे माँ और पिताजी ने उनसे राज साहब से बात भी की थी कि देखिए आजकल हम इतने तो पुराने ज़माने में नहीं रह रहे हैं कि अगर आपको ये सीरियस इतना है आप तो आप डिवोर्स ले लो, दोबारा शादी कर लो, ताकि हर चीज़ सही तरीके से हो, हर चीज़ का कोई तरीका होना चाहिए। तो वो हो नहीं पाया, इससे वो बहुत दुखी रहती थी। याद दिला दें जनाब कि जिस वक्त राज साहब ने स्मिता जी से शादी की तब उनका तलाक नहीं हुआ था। अलबत्ता वे अपने बीवी बच्चे छोड़कर ज़रूर स्मिता जी के पास आए थे, ऐसा स्मिता जी की जीवनी लिखने वाली मैथिली राव ने अपनी किताब में लिखा है। इसमें यह भी दर्ज है कि स्मिता जी के इस कदम से उनकी माँ ख़ास तौर पर काफ़ी नाराज़ थीं। उनका कहना था कि जिंदगी भर औरतों के हक के लिए लड़ने वाली उनकी लड़की किसी औरत का घर कैसे तोड़ सकती है। पर स्मिता जी ने तब शायद उनकी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि राज साहब के साथ उनका रिश्ता भी ठीक ठीक नहीं जुड़ पाया। यह सब 1986 के आसपास की ही बात है। उसी साल 28 नवंबर को उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। सामान्य प्रसव था, पर अचानक न जाने क्या असामान्य हुआ कि स्मिता जी की सांसें थम गईं। फिर इस बारे में मान्या से सुनिए। उन्हें उम्मीद थी, लगता था कि वे कुछ करने वाले हैं, पर कुछ किया नहीं उन्होंने। इससे उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। मुझे याद है एक बार उसने मुझसे कहा कि मान्या मैं खुद की नज़रों में इतनी गिर गई हूँ कि पता नहीं कभी इससे उठ पाऊँगी या नहीं। वो इतनी ज़िद्दी लड़की किसी को भी टक्कर देने के लिए कभी पीछे नहीं हटती थी। ऐसी लड़की ने अपनी ज़िंदगी से हार मान लेना ये बहुत ही ट्रेजेडी हुई। फिर आगे वह आखिरी लम्हों की बात, ड्यूरिंग द बर्थ कुछ नहीं हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम हुआ था। उनको अगर डॉक्टर वक्त पर चेक करते, उनको बुला के वहाँ पर टेस्ट कराते तो प्रॉब्लम निकल जाता। ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। मेरे ख़्याल से जब वह प्रेग्नेंट थी तो करीब एक बरस उनके जो मानसिक हालत थे वो बहुत ही लो हो चुके थे। पर उसको इतनी चाह थी बच्चों की कि वो कहती थी कि अभी मैं ये तोड़ूंगी, फिर से कोई मिलेगा तो फिर बच्चा कब होगा। उसे बहुत बेकरारी से बच्चे की चाह थी, वह माँ बनना चाहती थी। उसकी इतनी गहरी इच्छा थी कि उसके लिए उसने खुद को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब बच्चा आया एक्चुअली, तब मेरे ख्याल से उसके लिए एक आशा की किरण दिखी कि नहीं, ये बच्चा मेरा है, बाकी सब जाने दो, इसको मुझे अच्छे तरीके से पालना है। और शायद वो रिलेशनशिप से भी निकल जाती आगे फिर, पर वो हो नहीं पाया। होता कैसे जनाब, अभी मान्या ने ही कहा ना, हर चीज़ का वक्त होता है, और शायद उस वक्त को ही नसीब कहते हैं। तो शुरू हो या आखिर, जैसा भी था, स्मिता पाटिल जी का वक्त था।